जैसे ही वैदेही को अपने मोबाइल का यशवर्धन सिंह के घर पर होने का पता चला, वो बिना कुछ सोचे समझे उसके घर पर जाने के लिए निकल पड़ी। नरगिस ने उसके साथ जाने की कोशिश की, लेकिन वैदेही ने उसकी एक नहीं सुनी और अकेले ही चली गई। रात के 1 बज रहे थे और वैदेही की कार यशवर्धन सिंह के बंगले के आगे खड़ी थी। कार से बाहर निकलते वक्त वैदेही को ख्याल आया कि वो जल्दी जल्दी में शॉर्ट्स और टी शर्ट में यशवर्धन सिंह के घर आ गई थी। हड़बड़ाहट में होने के कारण मैंने अपने कपड़ों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। अंदर जाने से पहले उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा, फिर उसकी नज़र अपने पैरों पर गई। कपड़े तो क्या, मैं स्लीपर्स भी पहनना भूल गई थी। हे भगवान, वैदेही, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? पहले अपना मोबाइल ऐसे ही छोड़ दिया और अब इस तरह आधी रात को तुम एक ऐसे शख्स के घर के आगे खड़ी हो जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वैदेही दरवाजे के आगे खड़े होकर खुद से बातें कर रही थी, तभी सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आया। उसने उसे देखते ही पहचान लिया, आप तो वही है ना जो साहब का इंटरव्यू लेने के लिए आई थी? वैदेही ने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए हाँ में जवाब दिया। हवा तेज होने की वजह से उसके बाल बिखर चुके थे, जिसे वो बार बार कानों के पीछे करके उड़ने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लेकिन आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? उसने हैरानी से पूछा। देखिए, जब मैं यहाँ आई थी तब मेरा मोबाइल यहीं पर रह गया था। मैं किसी को डिस्टर्ब करने के इरादे से नहीं आई हूँ। मेरा फोन, वैदेही ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि सिक्योरिटी गार्ड बीच में बोल पड़ा, आप सुबह आइएगा मैडम, साहब अब तक सो चुके हैं। आर यू सीरियस? मेरा मोबाइल रह गया है, मैं अपना मोबाइल लिए बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। आप दरवाजे खोलो, मुझे अभी यशवर्धन से मिलना है, वैदेही ने सख्त अंदाज में कहा। मैंने कहा ना आपको, सर अब तक सो चुके हैं, आपका मोबाइल कहीं भाग नहीं जा रहा, आप सुबह आकर भी तो ले सकती हैं। वैदेही सिक्योरिटी गार्ड्स की बात सुनने को तैयार तक नहीं था। आपको अपना फ़ोन लेने के लिए सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मुझे अपना फ़ोन नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। वैदेही पहले काफ़ी शांत तरीके से बात कर रही थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड के तरीके की वजह से उसे गुस्सा आने लगा। जैसी आपकी इच्छा, गार्ड ने कहा और वहाँ से वापस अपने केबिन में चला गया। वहाँ उसके अलावा और भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। वो लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके सीनियर गार्ड ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि वैदेही को यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जाए। मैं भी पता नहीं कहाँ फंस गई, ये लोग तो यशवर्धन को कॉल करके बता तक नहीं रहे कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। वहाँ बाहर रहते हुए वैदेही अंदर जाने की तिकड़म लगा रही थी। अचानक उसने कुछ सोचा और वो एक गार्ड के पास जाकर बोली, एक्सक्यूज मी, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? उसकी बात सुनकर उस गार्ड ने दूसरे गार्ड की तरफ देखा। वो वैदेही के पास आया और बोला, देखिए मैडम, आप पूरी रात यहाँ रुककर क्या करेंगी? पिछले आधे घंटे से परेशान होकर इधर उधर चक्कर लगा रही हैं। हमारी बात मानिए और यहाँ से चले जाइए, कल सुबह आपका मोबाइल आपके घर तक पहुँच जाएगा। और कल सुबह की न्यूज़ में ये भी देख लेना कि मेरे साथ यशवर्धन सिंह के घर के आगे क्या सुलूक किया गया था। मैं आपसे एक फ़ोन कॉल करने के लिए आपका मोबाइल ही तो मांग रही हूँ, मेरा मोबाइल अंदर रह गया है, तो अब क्या आप मुझे कॉल करने के लिए मेरी इतनी भी हेल्प नहीं कर सकते? वैदेही ने उन्हें धमकी दी। सिक्योरिटी गार्ड ने अपना मोबाइल निकाला और वैदेही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, लेकिन आप न्यूज़ एजेंसी में कॉल करके यहाँ रिपोर्टर्स नहीं बुलाएगी, मैं आप पर विश्वास करके आपको कॉल करने के लिए अपना मोबाइल दे रहा हूँ। वैदेही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने ही मोबाइल पर कॉल करने लगी। कॉल करते हुए उसने सोचा, ये सब पहले मेरे माइंड में क्यों नहीं आया, हड़बड़ाहट में मैं सीधे यहाँ आ गई, इससे अच्छा अपने घर से कॉल करती तो यशवर्धन खुद भी तो मेरा मोबाइल मुझे घर तक पहुँचा सकता था। वहीं अंदर यशवर्धन अब तक जाग रहा था और वैदेही के मोबाइल को ही देख रहा था। वो उसका लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी वैदेही के मोबाइल की रिंग बजी। इतनी रात को किसका कॉल आया होगा? ये न्यूज़ रिपोर्टर है, ऊपर से क्राइम कवरेज करती है, कहीं कोई इमरजेंसी तो नहीं होगी ना? यशवर्धन ने मोबाइल स्क्रीन पर नए नंबर देखकर सोचा। वो असमंजस में था कि उस कॉल को पिक करे या नहीं। लगभग 2 बार उस नंबर से फ़ोन आ चुका था जो कि बाहर से वैदेही ही कर रही थी। यशवर्धन ने उसे भी नहीं उठाया। अगर फिर से कॉल आया तो उठा लूँगा, यशवर्धन ने खुद से कहा। वहीं बाहर खड़ी वैदेही 2 फ़ोन कर चुकी थी, उसके बावजूद यशवर्धन ने कॉल पिक नहीं किया। कहीं वो सच में सोने तो नहीं चला गया होगा, वैदेही ने खुद से कहा। सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि वैदेही जिसे कॉल कर रही थी वो उठा नहीं रहा था। उसने दूसरे गार्ड से कहा, मैंने इन्हें अपना मोबाइल दे तो दिया, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये रिपोर्टर्स ना बुला ले, वैसे भी काफ़ी देर हो गई है। ऐसा करता हूँ कि अपना फ़ोन वापस ले आता हूँ, हाँ अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो हमारी नौकरी भी खतरे में आ सकती है। वहाँ मौजूद दूसरे सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी बात पर हामी भरी। वो सिक्योरिटी गार्ड वैदेही के पास जाकर बोला, मैडम रात के 2:30 बज रहे हैं, आपको अपने घर चले जाना चाहिए, आप जिसे फ़ोन कर रही हैं वो भी अब तक सो गया होगा, आपके पास तो खुद की गाड़ी भी है, फिर क्यों जिद कर रही हैं? लाइए मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दीजिए, बस एक बार और ट्राई कर लेने दीजिए। क्यों, किसी की नींद ख़राब कर रही हैं? अगर किसी को फ़ोन उठाना होता तो वो उठा चुका होता, आप पहले भी उन्हें कई बार कॉल कर चुकी हैं, गार्ड ने जवाब दिया। आप यहीं पर खड़े रहिए, मैं आपके सामने ही एक कॉल और कर लेती हूँ, अगर फिर भी उन्होंने पिक नहीं किया तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। एंड डोंट वरी, मैं न्यूज़ रिपोर्टर्स को कॉल नहीं कर रही, अगर मुझे तमाशा बनाना होता तो मुझे दूसरे रिपोर्टर्स की क्या ज़रूरत है, मेरे पास मेरी गाड़ी है और उसमें कैमरा एनी टाइम होता है, वैदेही ने कहा। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड वहीं पर खड़ा हो गया और वैदेही के फ़ोन लौटाने का इंतज़ार करने लगा। वैदेही ने एक बार फिर कॉल किया और इस बार यशवर्धन ने उसका फ़ोन उठा लिया।
हेलो कौन? यशवर्धन ने फोन उठाते ही पूछा। हेलो यशवर्धन जी, मैं वैद्य ही बोल रही हूँ। मेरा मोबाइल तुम्हारे पास है। मैं तुम्हारे घर के आगे खड़ी हूँ और गार्ड्स मुझे अंदर आने नहीं दे रहे हैं। जैसे ही वैद्य ने अपनी बात खत्म की, गार्ड उसे घूर कर देखने लगा। आप अपने मोबाइल पर फोन कर रही थी क्या? उसने धीमी आवाज में पूछा। आप वहीं रुकिए, हम आते हैं, कहकर यशवर्धन ने फोन कट कर दिया और वैदेही को लाने के लिए बाहर आने लगा। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। उसने जिस मकसद से वैदेही का फोन लिया था वो पूरा होने वाला था। हमें नहीं पता था कि आप इतनी बेचैन हो जाएंगी कि वक्त का भी ख्याल नहीं रहेगा। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह फिर से आपसे रात को मुलाकात होगी। रात, एक हसीन रात। भले ही हमारा आपसे मिलने का मकसद कुछ भी हो, लेकिन ना चाहते हुए भी हम आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं वैदेही, सोचते हुए यशवर्धन नीचे आ रहा था। अपने घर के दरवाजे के बाहर आया। वैदेही गार्ड्स के साथ खड़ी थी। वो नजर भर वैदेही को देखने लगा, जहां वो हर बार से अलग लग रही थी। उसने हमेशा उसे प्रोफेशनल लुक में ही देखा था। आज उन सबसे अलग सादे कपड़ों और खुले बालों में वो बहुत सीधी और मासूम लग रही थी। तो वहीं वैदेही ने यशवर्धन को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसने भी राहत की सांस ली। थैंक गॉड आप आ गए, वरना मुझे लगा था कि आज पूरी रात आपके बंगले के बाहर बितानी पड़ेगी।
हमारे रहते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें नहीं पता था कि आप हमारे घर के आगे खड़ी हैं, वरना हम खुद आपको लेने आ जाते, बोलते हुए यशवर्धन ने गार्ड की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा। हमने आपसे कितनी बार कहा है कि बाहर कोई भी हो, एक बार हमें कॉल करके बता तो दिया करो। इनकी भी कोई गलती नहीं है, मुझे भी इतनी रात को यहाँ नहीं आना चाहिए था। इन्हें लगा तुम सो गए होगे, तो इस तरह बीच में नींद से उठाना सही नहीं रहता, वैदेही ने बीच बचाव करते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि यशवर्धन गार्ड्स पर गुस्सा करें, फिर भी अगली बार अगर कोई भी आए, स्पेशली वैदेही जी, तो आप हमें पहले कॉल करके बताएंगे, चाहे वो कोई भी वक्त क्यों ना हो रहा हो, यशवर्धन ने कहा। गार्ड ने सिर हिलाकर उसकी बात पर हामी भरी और वैदेही को सॉरी कहा। उसके बाद यशवर्धन वैदेही को अपने घर पर लेकर गया। बाहर आपके साथ जो भी सलूक हुआ उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमें भी कुछ देर पहले ही आपका मोबाइल गार्डन में पड़ा हुआ मिला था। रात काफी हो गई थी, इस वजह से हमने कॉल नहीं किया और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे ताकि आपको आपका फोन लौटा सकें, यशवर्धन ने साफ झूठ बोला। ओके, मुझे लगा मेरा फोन मेरे असिस्टेंट डेव के पास रह गया है। आप तो जानते हैं ना कि हमारे फोन में क्या कुछ नहीं हो सकता, बस यही सोचकर लेने चली आई। आई होप कि मैंने आपकी नींद में खलल नहीं डाला होगा, वैदेही के पूछने पर यशवर्धन ने नामे सिर हिलाया। जो भी हुआ उसे भूल जाइए, अब आप मेरा फोन मुझे वापस कर दीजिए ताकि मैं उसे लेकर अपने घर जा सकूं। नहीं वैदेही जी, अब आपको आपका फोन वापस नहीं मिलने वाला है, यशवर्धन के जवाब ने वैदेही को चौंका दिया। आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कुछ समझी नहीं, उसने पूछा। अरे अरे घबराइए मत, हम ये कह रहे हैं कि अभी आपका मोबाइल आपको वापस नहीं मिल सकता। हमने ये नहीं कहा कि हम आपका मोबाइल आपको कभी नहीं लौटाएंगे। उसकी वजह? ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि आप काफी देर से बाहर हैं। पहले भी आप हमारा इंटरव्यू लेकर ऐसे ही चली गई थी। एक थकावट भरे दिन में काम करने के बाद इंसान सोचता है कि रात को सुकून से सो सके, लेकिन हमारी वजह से आपका सुकून छिन गया। ऐसे तो हम आपको जाने नहीं दे सकते, यशवर्धन के कहते ही वैदेही के चेहरे पर राहत के भाव थे। उसके ना कहने की वजह से वो सच में थोड़ा घबरा गई थी। तो बोलिए कि इस वक्त हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं, चाय या कॉफी? सच कहूं तो इस वक्त मुझे एक हार्ड कॉफी की बहुत ज्यादा जरूरत है, वैदेही ने कहा। फिर तो खुली हवा में आपके साथ कॉफी पीने का मजा ही कुछ और होगा। बस आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, तब तक आप चाहें तो हमारे गार्डन में घूम सकती हैं, वैदेही ने उसकी बात पर हामी भरी और गार्डन में चली गई। वहीं यशवर्धन अंदर वैदेही के लिए कॉफी बना रहा था, जबकि वैदेही बाहर गार्डन के अंदर लगी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर बैठकर आंख बंद करके आराम से हवा को महसूस कर रही थी।